ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பிராப்த கர்ணா சாஹே ஓர் யே ஆத்ம சத்தா. எக் பாத் ஓர் தியான் ரக்னா, ஸ்வர்க மே பேட்டே ஹுவே தேவதா லோக் யே சோச்சே நா कि इस आत्मा को हम समझ लें, हम प्राप्त कर लें. तो याद रखा, देवान कहा गया है, देवता भी इस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते. यदि इंद्र को, देवताओं को भी ये आत्म ज्ञान को, इस आत्मा को पहचानने की, उनको इस आत्म जिज्ञासा बने, उसको आत्मा को जानना चाहें, तो उन्हें भी इसी मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा. नारायण इसी मनुष्य शरीर, वो भोग तो भोग सकते हैं, परंतु आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को प्राप्त करने के लिए उन्हें भी मनुष्य शरीर में, इसी आत्मा इसी में प्राप्त कर सकते हैं. किसी अन्य नाम रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता. वो स्वमें स्थिर रहकर, वह स्वस्वरूप में स्थित हुए बिना, अपने आप में स्थिर हुए बिना, जिस आत्म स्वरूप को नहीं जाना जा सकता. देवता लोग भी स्थिर नहीं है कहते हैं, जो उनमें भी परिवर्तन है, और वो देवता भी भोग में लगे रहते हैं, जिसके कारण वो भी उनको नहीं वो कर सकते हैं. इसलिए ऐसा जो दिव्य स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, ये श्रुति बताती है, अनेज देकम मनुषो जीवयो नैनम देवा आपन ब्रुमन. देवता लोग भी चाहें कि अपने पूर्व मर्षत, वो देवता लोग सोचे कि हम जबरन इस आत्मा को प्राप्त कर लें, अर्थात इस आत्मा को प्राप्त न कर सके तो इसे मार दें, इसे नष्ट कर दें, तो देवता लोग भी अर्थात ब्रह्म भी, स्वयं भगवान भी इसको मारना चाहे, इस आत्मा को, तो मार नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, हटा नहीं सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकते. ऐसी जो शाश्वत स्वरूप हमारा निज स्वरूप आत्मा का है नारायण, इसलिए उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करके करने के लिए भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया है. तद धाव तो अनन्यो येति तिष्ठन्ति स्मिन्न आपो माति स्रवा दधाति. ये कहा गया है, श्रुति ये कहती कि वह आत्मा जो सबसे पहले गया हुआ, गतिशील का अतिक्रमण करते, अर्थात उस वायु की तरह समग्र प्राणियों के अंदर, समग्र प्राणियों में, सृष्टि में, जो प्रवृत्ति में भागती दिखाई पड़ रही है, गतिशील जाती हुई दिखाई पड़ रही है, ये आत्मसत्ता ही है. आत्मसत्ता से ही हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिसके लिए मैं अनेक बार कहती हूँ, आंखों में रहकर आंखों को देखने की ताकत, कानों में रहकर कानों को सुनने की ताकत, और आंख में रहकर आंखों को देखने की ताकत देकर आंख से अलग, कान में रहकर कान को सुनने की ताकत देते हुए कान से अलग, नासिका में रहकर गंध ग्रहण करने की ताकत देखते हुए नासिका से अलग, जिह्वा में रहकर के स्वाद को ज्ञान कराते हुए उस जिह्वा से अलग, जो इंद्रियों में रहते हुए भी इंद्रियों से अतीत है, अलग है, जिससे सब आंख देख पा रही है, कान सुन पा रहे हैं, और बुद्धि विचार कर पा रही है, मन गतिशील हो रहा है, चित्त चिंतन कर रहा है, प्राणों का आना जाना सहज हो रहा है, पंच प्राण कार्य कर रहे हैं, सब जिसकी सत्ता से, जिससे सत्तावान होकर, जिससे गति पाकर सब इंद्रियां, स्थूल शरीर हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, खा रहे हैं, ये सारे का सारे के सारे कार्य किससे हो रहे हैं? बोले उस आत्मा की चेतनता से, उस आत्मा से ही ये सब चल रहा है। और वह जो सबको चला रही है वो आत्मा स्वयं इन इंद्रियों से नहीं चलती है। आंख उसे दिखा नहीं सकती हैं, कान उसे सुना नहीं सकते हैं, नासिका उसे सूंघ नहीं सकती है, जिह्वा उसे चख नहीं सकती, जीव से उसका स्वाद पता नहीं लगाया जा सकता है, और नासिका से सूंघ करके उसकी गंध का पता नहीं लगाया जा सकता है, जिसे जो इंद्रियों की गति से परे है, जहां तक इंद्रियां पहुंच सकती हैं, जो उनकी पहुंच से परे है आत्मा, वह आत्मा इंद्रियां उससे गतिवान हो रही है जो आत्मा से, जो इंद्रियों से अतीत है। ऐसे ऐसे व्याप्त तत्व वो कौन है? बोले आत्मा है, इसी और इसी शरीर में। वो कहाँ है? बोले इसी शरीर में है। और इसी शरीर में कैसे है? वो ऐसे है कि इंद्रियां सब उससे जड़ चेतन प्रतीत हो रहा है, सुंदर प्रतीत हो रहा है। जो असुंदर शरीर है, शरीर बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा सजीव लगता है, इसमें सजीवता है, सुंदरता है, आकर्षण है शरीर का, और परंतु जिससे ये शरीर आकर्षण पा रहा है, जिससे शरीर सुंदरता पा रहा है, जिससे शरीर गतिशीलता पा रहा है, जिससे शरीर सजग चेतन प्रतीत हो रहा है, जड़ शरीर जो चेतन प्रतीत हो रहा है, जिसमें चेतनता मिल रही है, वह आत्मा इस शरीर में होते हुए भी शरीर से अलग है। तो जो शरीर से अलग है उसको अनुभव में कैसे आए, उसको हम कैसे अनुभव करें? कहा कि उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले ये करना होगा कि समग्र जो शरीर की चेतना दिन रात हमारी शरीर से जीवित होकर जो बाहर की ओर दौड़ रही है, दौड़ रही है, हमारी ऊर्जा अर्थात इन शरीर से इंद्रियां, कर्मेंद्रियां जिससे सजगता मिल रही है, ज्ञानेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन सहित ये 11 जो हमारी इंद्रियां हैं बाहर की ओर दौड़ रही है। इसलिए कहा गतिशील है मनुष्यो जीवयो, निरंतर ये जीव गति पाकर दौड़ रहा है, बाहर की तरफ दौड़ रहा है। तो उससे क्या करे? थोड़े से विचार पूर्वक, संत इसीलिए कहते हैं भैया बहिरंग नहीं है, अंतरंग है, थोड़ी सी इस गति के संबंध में विचार करो, ठहरो, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, ठहर जाओ, और ठहर कर अपने भीतर अपनी अपनी इंद्रियों को कुछ क्षणों के लिए अभ्यास करो कि जहां है वही इनको, इनका जो व्यवहार चल रहा है, व्यवहार नाम वृत्ति का है, जो इंद्रियों का व्यवहार चल रहा है उस व्यवहार से हटा करके, व्यवहार से इंद्रियों को हटा करके अपने अपने स्थान पर स्थिरता करो। तो उस स्थिरता में जैसे इंद्रियां स्थिर होंगी, उस स्थिरता में एक आनंद की आपको अनुभूति होगी। पर आप ये समझ लें कि वो आनंद की जो अनुभूति हो रही है स्थिरता में, एकाग्रता में, वही आत्मा है। बोले ऐसा समझे? बोले नहीं नहीं, वह तो केवल उस स्थिरता से, उस एकाग्रता से, उस आनंदमय का थोड़ा सा आपने अनुभव किया, आनंद आया, शांति मिली, तो आपको ऐसा समझना चाहिए कि मैं आप शांति नहीं है, आप शांति स्वरूप है, आप आनंद नहीं है, आनंद स्वरूप है, आप ज्ञान नहीं है, आप ज्ञान स्वरूप है। कोई ये कहे कि मुझे ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप है। आनंद नहीं है, आनंद स्वरूप है। चित नहीं है, चित तो चेतन है, चित ही नहीं, चेतन स्वरूप है। स्वरूप रूप बाह्य होता है, स्वरूप अंतरंग होता है और भीतर। वह प्रेम नहीं है, प्रेम स्वरूप है। इसलिए उस स्वरूप में आत्मस्वरूप, आत्मा नहीं कि आत्मा का स्वरूप है, आत्मस्वरूप है स्वस्वरूप में। इस और उसके भीतर आइए तो आप ऐसा समझें, जब आनंद का आपको अनुभव होता, स्फुरण होता है, तो वह आपका मार्ग अच्छा है। उस स्फुरण ने और आपके अंदर रुचि पैदा की। आप ऐसे अपने भीतर गए, ऐसे भीतर गए, ऐसे डूबे कि डूबने के बाद आपका नामो निशान, नाम रूप मिट गया। गंगा सागर में जाकर ऐसी गिरी कि उन्होंने अपना नाम और रूप को खो दिया, अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया। गंगा गंगा नहीं रही, गंगा सागर बन गई। अर्थात स्वरूप वो सागर है जिसमें रूप का अस्तित्व लय हो जाता है, नाम का अस्तित्व लय हो जाता है, चिंतन का अस्तित्व लय हो जाता है, एकाग्रता का अस्तित्व लय हो जाता है। वहाँ कुछ शेष रहता नहीं है, वहाँ हमारा अपना वो तो स्वरूप का आनंद का, जैसे सागर अनहार जल है समुद्र में, वैसे ही अपना अथाह जो रूप है, वो अथा अनंत का रूप ही ब्रह्म है, नारायण, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीम है, असीम है। उस असीम के साथ हमको मिल जाना है। कई बार मैं कहती हूँ किस असीमता में, उस अनंत और असीम के साथ अपने आप को मिलाकर मिटा देना है, उस अनंत असीम के साथ होना है। माना कि ब्रह्म अनंत असीम के साथ कैसे मिलना है, बड़ा उदाहरण है कि एक बालक नदी के किनारे बैठा हुआ है और वो घर से आया था, उसने समुद्र के बारे में बहुत सुना हुआ था, पहली बार उसने समुद्र देखा, समुद्र में अथाह जल देखा। समुद्र के मैं उसने सुन रखा था कि समुद्र में बहुत सारा जल होता है, परंतु देखा नहीं था उसने। और समुद्र के तट पर जब आया, उसने अथाह अतंत जल को देखा, तो उसने सोचा था कि मैं समुद्र को भर करके ले आऊंगा, पर वहां आने पर उसे बड़ी निराशा हुई। इतना अथाह जल है, इस अथाह जल को मैं कैसे भर सकता हूँ, मेरे पास पात्र छोटा है, जल अथाह है। वो अपनी असमर्थता से, अपनी आशा को पूरी होते हुए न देख करके वो बालक रोने लगा। इतने में एक सज्जन वहां से निकल रहे थे, उन्होंने कहा, बेटा रोता क्यों है? कहा कि देखो, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने सागर के लिए सुना था, और सागर को उसके बारे में सुनकर सागर को देखने के लिए सागर के निकट आ गया, और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ तो अथाह जल है, परंतु मैं सागर को भर लेना चाहता था, सागर को भर के अपने पास रखना चाहता था, पर मेरे से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो अथाह जल है, ये भरा नहीं जाएगा। तो उस सज्जन ने उसे समझाया कि देखो, जो अनंत होता है, असीम होता है, उसे किसी सीमा में, किसी में बांधा नहीं जा सकता है। इसलिए तुम ये असीम अनंत को बांधने की जो तुम्हारे अंदर चाह थी, इस चाह को छोड़ दो, इस इच्छा को छोड़ दो। उस बालक ने उसकी बात सुनी कि उन्होंने कहा, इस चाह को छोड़ दे दो, इस समुद्र पाने की जो अथाह को, असीम अनंत को, तो जो तुम पाना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, वो अनंत असीम सागर तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। तुम उसे पाना चाहते हो, ये तुम्हारी चाह तुम्हें जो दुखी कर रही है, इस चाह को तुम छोड़ दो। उस बच्चे ने क्या किया कि वो जो पात्र अपने साथ लेकर के आया था, उसने उठाया, उसी को समुद्र में फेंक दिया। उस सज्जन ने उससे पूछा कि तुमने ये क्या किया। उसने कहा जो आपने मुझे समझाया, जो मैं समझा वही मैंने किया। तुम्हारे पात्र इसमें फेंक देने का, जो तुम्हारे पास तुम जिसमें सागर को भर के तुम अपने पास रखना चाहते थे, उस पात्र को ही तुमने समुद्र में फेंक दिया। कहा हमारा यही तो आपने महाशय जी समझाया था कि अनंत असीम को कभी किसी सीमा में नहीं लाया जा सकता है, पर अनंत असीम के साथ अपने मिटाया तो जा सकता है, मिटा तो जा सकता है। मैं अपने पात्र को इसमें डाल करके, सागर में डाल करके मैं इसमें मिट जाना चाहता हूँ। याद रखना, अनंत असीम को कभी बुद्धि का विषय बनाकर, मैं ये सोचूं कि मैं आत्मा को बुद्धि विषय बनाकर, अपनी बुद्धि का विषय बनाकर, बुद्धि के विषय के में लाकर, बुद्धि के विषय में लाकर, बुद्धि के द्वारा विषयी बनाकर उसे मैं जान लूं, जिसकी जानकारी प्राप्त कर लूं। याद रखना, वो इस प्रकार कभी किसी का बुद्धि विषय बनकर, वो बुद्धि से जान करके वो समझ ले कि मैंने आत्मा को प्राप्त कर लिया, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। वो बुद्धि विषय नहीं है। बुद्धि से उसके लिए विचार करते हुए, विचार करते 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 करते, वो विचारवान जो बुद्धि है, वो बुद्धि ही लय हो जाए, समाप्त हो जाए, अनंत असीम के साथ मिल जाए। उस अनंतता में वो मन चिंतन करते 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 मन ही विलय हो जाए, अनंत असीम का चिंतन करते हुए मन विलीन हो गया, बुद्धि विलीन हो गई, न बुद्धि रही न मन रहा, उस अनंत में खो गया, मिट गया, विलीन हो गया। इसने जिसकी मिट गई, खो गई, मिलीन हो गई, उसने बोल दिया मैं प्राप्त कर गया, प्राप्तव्यो, प्राप्त हुआ, अर्थात प्राप्त हो गया। अप्राप्त प्राप्त नहीं, उसने उसका जो अनुभव रहा, जो मिटा, उसका अनुभव ये नहीं रहा कि मैं उस आनंद स्वरूप हूँ। उसने कहा कि आनंदो हम, आनंदो हम, आनंद आनंद, उसने यही किया, आनंद आनंद, धन्य धन्य, कृत्य कृत्य। उसने ये नहीं कहा कि आनंद मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ का जो अनुभव है, अहम ब्रह्मास्मि का, वो उसका भाव ये नहीं है कि वो आत्मवेता ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म विदम ब्रह्मे भवति, ब्रह्म को जानने वाला ही ब्रह्म है। वो ब्रह्म में और उसमें कोई भेद नहीं, अलग अलग नहीं है, वो दो नहीं है। नहीं तो दो की सत्ता तुम्हें माननी पड़ेगी, एक आत्मा की, एक आत्मज्ञानी की, दो पैरेलल साथ साथ दोनों चलेंगे, वहां दो नहीं है, एक हो, एक है वह, एक एकमेवा अद्वितीयम श्रुति कहती है, वो एक है और अद्वितीय है। वह एक अद्वितीय कौन है? बोले केवल आत्मा है, ब्रह्म है। जिसे ब्रह्म कह दो अथवा आत्मा कह दो, बात एक ही है, इसलिए वो एक है। उस अनंत असीम के साथ हमारा मन मिल जाए, हम उसमें खो जाए, मिट जाए, समा जाए, अस्तित्व मिल जाए, उसके लिए हमें यही करना है कि अपनी इंद्रियों की वहीता को, जो दिन रात ये केवल सुन करके हम समझ लें और बुद्धि से विचार कर, ऐसा लगता है जब बुद्धि विचार करने लगती है ना, अब बस अब पकड़ में आ गया, हाथ में आ गया, अब मुट्ठी पकड़ लो, जल्दी से पकड़ लो, परंतु याद रखना वो किसी शब्द के द्वारा पकड़ में आने वाला, इसीलिए कहा शब्दातीत गुणातीत, वो किसी गुण में, किसी ने गुणातीत है, वो शब्दातीत है, शब्द से परे है, शब्द उसे पकड़ नहीं सकता, उसका वह अनुभव स्वरूप है, वो अनुभव नहीं है, अनुभव स्वरूप है, अनुभव स्वरूप जो है स्वरूप ही है। वो इसीलिए कहते हैं जो खाया वो बोलता नहीं है, जो बोलता है वो खाया नहीं। ये बहुत से लोग कह देते हैं ना गूंगे का गुड़, अर्थात गूंगा क्या, अच्छा भी आदमी हो, बोलने वाला भी आदमी, जवान वाला भी हो, और उसे गुड़ खिलाओ और उससे बताओ गुड़ का स्वाद बताए। अच्छा, उस जो स्वाद बताने लगेगा तो कहेगा वो गुड़ बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। और उससे अब वो उससे कहो कि तू ये कैसा मीठा है बता, तो क्या वो बता पाएगा? वो हार के आखिर में क्या कहेगा? अच्छा तुम खा लो तो तुम्हें पता चल जाएगा। वो बात में यही कहेगा, अच्छा तुम खा लो तो तुम्हें पता चलेगा। तो जो खाता है वही बता नहीं सकता है, जिसने उसको खाया है वो भी बताने में असमर्थ है, उसके पास भी कोई शब्द नहीं है। क्योंकि यदि वो तुलना करे उस जैसा है, तो जहां वो तुलना करेगा वो गुड़ को किस जैसा, गुड़ के मीठा 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 कहेगा, अब वो चीनी जैसा बताए, मिश्री जैसा बताए, क्या बताए, उसके पास क्या है? उसको बताने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं। इसलिए ऐसा जो आत्म स्वरूप है, ऐसी जो हमारी आत्मा है, उसके लिए श्रुति कहती है कि वह आत्म तत्व स्वरूप जो कभी विचलित होने वाला नहीं, जिसमें कोई स्पंदन नहीं है, जिसमें कोई अविचलितता माने जो परिणामी नहीं है, अपरिणामी, जो परिवर्तन से हमेशा रहित है, जिसे कोई विचलित नहीं करने वाला, वो एक है, मन से भी अधिक तीव्र गति वाला है, इंद्रियों से जो प्राप्य नहीं है, इंद्रिया जिसे प्राप्त नहीं कर सकती है, नहीं पा सकती, नैनम देवा आप्रवन, देव किसी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के देवता हैं, आंखों के देवता हैं, कानों के देवता हैं वायु, और आंखों के देवता हैं अश्विनी कुमार, और बुद्धि के देवता सूर्य हैं, मन के देवता चंद्रमा हैं। इसलिए कहा ये किसी देवता के द्वारा प्राप्त नहीं है। इसका अभिप्राय ये, देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते कहने से अभिप्राय, जो इंद्रियों के अधिष्ठात्र देव हैं, उनके द्वारा नहीं प्राप्त, क्योंकि सर्व देवताओं के सर्व के अधिष्ठान स्वरूप, सर्व के अधिष्ठात्र देवता है, जो सबका अधिष्ठान है, वो केवल एक आत्मा है। इसलिए वो किसी इंद्री के देवता के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो स्थिर है, और वो कभी किसी गतिशील होते हुए भी वो स्थिर है। और कहा कि उसको कोई भी देवता अतिक्रमण करना चला जाए, कोई ये कहे कि मैं आत्मा से आगे निकल जाऊं, आत्मा का कभी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, उससे आगे किया है, आत्मा से ऊपर किया है। कोई पूछे मस्तिष्क पांव से ऊपर क्या है, बोले जंघाएं, जंघा से ऊपर क्या है कमर, फिर वक्षस्थल, फिर भुजाएं, फिर कंठ, फिर मुखारबिंद, फिर सिर, और कोई पूछे सिर से ऊपर क्या है, तो उसका अतिक्रमण कौन कर सकता है, कौन बता सकता है कि सिर से ऊपर क्या है, कोई नहीं बता सकता। इसलिए उस आत्मा से ऊपर क्या है, जिसका कोई देव अतिक्रमण नहीं कर सकता, वह स्वरूप हमारी निज आत्मा का है, तो अपनी महिमा इतनी अपरंपार है, जिसकी महिमा इतनी अपार हो, अनंत हो, ऐसा जिसका स्वरूप हो, और वो दीनहीन भिखारी बनकर घूम रहा हो, तो नारायण ये किसकी भूल है, ये किसकी भूल है, हम अपने को बड़ा दीन छोटा कंगाल बना करके। मुझे अच्छी बात लगती है विवेकानंद जी महाराज की, वो कहा करते थे या तो अपने अंदर आत्मभाव इस प्रकार स्थिर हो जाए, अपना विवेक, अपना विचार, अपना सोच, या तो अपने आप को इतना बुलंद कर दो, इतना महान कर दो कि तुम्हारी महानता में सब छोटे पड़ जाएं, उस महान जैसे इतना बड़ा विशाल कर दो। वो कहा करते थे कि जंजीर है, जंजीर को तोड़ने से बाहर निकलना है तो यही तरीका है। या तो अपने में इतना शक्तिशाली कर लो कि उस जंजीर को तोड़कर निकल जाओ, और नहीं तोड़ने की सामर्थ नहीं है, इतना छोटा कर लो चींटी जैसा कि उसके बीच से घुस करके निकल जाओ। या तो अपने आप को इतना दैन्य कर लो, इतना दीन और दैन्य कर लो जैसा दैन्य दीन किसने किया, बोले सूर ने किया, तुलसी ने किया, मीरा ने किया, नानक ने किया, भक्तों ने किया, इन संतों ने अपने आप को इतना दैन्य कर लिया, इतना दैन्य हो तो शुक्र। कौन कह रहे हैं? वो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने को शुकर की उपमा दे रहे हैं। और हो तो अधम नीच मोसो, कौन ऐसो अधम नीच खल पापी, कौन मेरा जैसा अधम होगा, कबहू की अम्ब अवसर पाई, कभी अवसर मिले तो दीनानाथ पतिन पावन भगवान से मेरी बात चला देना, कहना कि एक ऐसा अधम नीच खल मेरा जैसा पद की, अर्थात या तो अपने आप को इतना नीचा कर लो माने अपने अस्तित्व को इस प्रकार मिटा, या अपने आप में इतनी बुलंदी पैदा कर लो। दो ही रास्ते हैं हमारे सामने, ये अज्ञान की जंजीर है, अज्ञान की जंजीर है नारा, कर्म की जंजीर है, इस जंजीर को तोड़ करके हमें बाहर निकलना है। विवेकानंद जी महाराज कहते थे ये कर्म की जंजीर बड़ी मजबूत है, इस मजबूत जंजीर से निकलने के लिए या तो भक्ति भाव से अपने को दैन्य कर लो, या आत्म भाव से अपने आप को इतना महान कर लो कि इस जंजीर को तोड़ करके निकल जाओ। तो इन दो भावों में जिसे जो अच्छा लगे, जिस पर जिसकी स्थिरता बने, उस मार्ग से अपना आत्म कल्याण कर सकता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दे।